समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओ, आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर दैनिक कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। खेल गतिविधियां भी होंगी और आर्थिक जगत पर भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा हम बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि है या है जन्मतिथि। श्रोताओं, आज के अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वीसी प्रमोद। प्रमोद, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम गोल्ड। And as Mukesh rightly said, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, business, tributes and much more. All these over the next 30 minutes, but we begin with the news headlines first.
निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। मिजोरम में 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में 17, राजस्थान में 23 और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा।
That's right, Chhattisgarh elections in two phases on 7th and 17th November. Counting of votes for all five states to be held on the 3rd of December.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन ने आज नई दिल्ली में द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग की 5 वर्षों की रूपरेखा तैयार करने पर सहमत।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह टू बी ऑन अ 4-day विजिट टू इटली एंड फ्रांस फ्रॉम टुडे।
और इसराइल और हमास के संघर्ष में मृतकों की संख्या 1,100 से अधिक हुई।
And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national and the global level. Today we'll talk about World Postal Day. मुकेश, आपको याद होगा हमारे बचपन में जब हम चिट्ठियां लिखते थे अपने नानी और दादी को, कितना मजा आता था।
मैंने तो लिखी हैं। जी बिल्कुल।
एंड वो जो एक मजा है दैट यू कांट रिप्लिकेट विद द मोबाइल फोन,
बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता।
सो टुडे इज वर्ल्ड पोस्टल डे एंड पोस्ट ऑफिसेस प्ले अ क्रूशियल रोल इन फॉस्टरिंग कोहेसिव इंक्लूसिव एंड कनेक्टेड कम्युनिटीज।
खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द ना लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, खुशी का पयाम कहीं कहीं दर्द ना।
The purpose of World Post Day is to bring awareness to the post's role in the everyday lives of people and businesses, as well as its invaluable contribution to global, social and economic development. Theme for this year is Together for Trust, Collaborating for a Safe and Connected Future.
बिल्कुल, एक दौर था जब चिट्ठियां लोगों की भावनाओं से जुड़ी होती थी। खत के जरिए लोग आपस में बातचीत करते थे और अपने संदेश अपने प्रियजनों तक पहुंचाते थे। पहले के दौर में आपस में बातचीत करने के लिए पत्र ही एकमात्र साधन हुआ करता था, लेकिन अब वो दौर बदल गया है। बदलते दौर में अब शायद ही कोई ऐसा होगा जो अपने निजी और महत्वपूर्ण संदेश डाक के माध्यम से भेजता होगा या लेता होगा, और अगर उन्हें पहुंचाना भी है तो बस अब जो ईमेल का जो साधन चल गया है,
जी,
इधर क्लिक किया और
वहां पहुंच गया। करेक्ट। मुझे याद है मुकेश, जब मेरी नानी का खत आता था एक्चुअली मैं स्मेल करता था पेपर को, एंड मुझे उनकी खुशबू आती थी उसमें से।
जी, जी,
वो भी एक टाइम था।
बिल्कुल बिल्कुल।
इवन दो टुडे इज द एरा ऑफ 5G, द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट हैज नॉट डिमिनिश्ड इवन टुडे। इवन दो इन टुडेज टाइम वी डू नॉट यूज पोस्ट टू सेंड आवर मैसेजेस टू ईच अदर, बट इवन टुडे देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर द इंटरनेट हैज नॉट येट रीच्ड। इन सच प्लेसेस पोस्ट इज द ओनली सपोर्ट फॉर द पीपल। थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टिल रिलाई ऑन पोस्ट फॉर देयर ऑफिशियल वर्क।
जी हाँ, अगर विश्व डाक दिवस के इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 9 अक्टूबर 1874 में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में एक यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ। इसमें दुनिया के 22 देश शामिल हुए। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन डाक विभाग और पोस्टल सर्विसेज के लिए काम करने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय संस्थान था। बाद में वर्ष 1969 में जापान की राजधानी टोक्यो में इस एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन की गठन दिवस यानी 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया। तब से दुनिया भर के देश हर वर्ष इस समारोह में भाग लेते हैं। भारत में आधुनिक डाक विभाग की शुरुआत 18वीं सदी से पहले हुई थी। भारत में पहला पोस्ट ऑफिस कोलकाता में 1774 में खोला गया था।
That's right, Mukesh. And nowadays people are investing a lot in post office schemes. काफी अच्छे schemes आ रहे हैं post office schemes. Very safe and good rate of returns. There are many reasons for this. Mainly post office FDs and government schemes are least affected by volatility in interest rates. Market fluctuations have no impact on the returns. Post office FDs offer an interest rate of 6.8%, 6.9%, 7% and 7.5% for 1 year.
बिल्कुल और प्रमोद डाकघर की अगर हम बात करें तो डाकघर की जो बचत योजनाएं हैं वो सबके लिए सुलभ हैं। उसका कारण यह है कि डाकघर हर एक गांव में उपलब्ध है।
Exactly.
लेकिन अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक की शाखाएं हर एक गांव में उपलब्ध नहीं होती हैं।
Absolutely.
इसलिए लोगों के लिए ज्यादा फिजिबल होता है, ज्यादा आसान है।
करेक्ट एंड बहुत सेफ है पैसा।
बिल्कुल
दैट्स राइट। However, in the case of post office deposits, the entire saving schemes are a government of India backed and hence there is no chance of any default there.
जी हां, देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट में किए गए जमा पर आपको फिक्स ब्याज मिलता है। जिन्हें फिक्स रिटर्न चाहिए उनके लिए ये स्कीम फिट है। और खास बात यह है कि अकाउंट खुलवाने के लिए केवल 500 रुपए ही देने होते हैं, जबकि बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए कम से कम किसी किसी बैंक में तो 10,000 रुपए महीने आपको रखना ही पड़ता है।
एग्जैक्टली, इवन नेशनलाइज्ड
बैंक में राशि होती है।
बिल्कुल, इवन नेशनलाइज्ड बैंक में 1,000 रुपीज है।
बिल्कुल बिल्कुल। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष समाचार हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले पश्चिम बंगाल चलें प्रमोद
जी। बिल्कुल मुकेश, आई विल टेक यू टू कोलकाता। दुर्गा पूजा फर्वर इज ऑलरेडी इन द एयर इन द सिटी ऑफ कोलकाता। दिस ईयर अ पूजा स्पेशल ट्रैम विल ग्रेस द सिटी विद इट्स ब्यूटिफुल इंटीरियर्स एंड फैबुलस एक्सटीरियर्स। इट हैज बीन डिजाइंड टू कमेमोरेट द यूनेस्को हेरिटेज टैग टू दुर्गा पूजा एंड ऑल्सो टू सेलिब्रेट 150 ईयर्स ऑफ कोलकाता ट्रैमवेज।
The tram is part of an effort to celebrate Puja uniquely, where West Bengal Transport Corporation WBTC has collaborated with Asian Paints and XXL Collective. Kolkata's iconic tram, dating back to 1873, is a symbol of city's history and charm. To celebrate this milestone, a Puja special tram will run from Taliganj to Baliganj with a remarkable makeover, coinciding with Kolkata's most important month of celebration. The tram on the Taliganj route covers all the famous areas known to have historic and large puja pandals, making it the ideal choice for transportation. The exteriors of the first bogey captures the hand-painted artworks honoring Kumatuli, the traditional potter's quarters in North Kolkata where Durga idols are sculpted. It also encapsulates Sindur Khela and Dhunuchi dance. The bogey also highlights the unique stories featured in the current season of People of Puja, a visually impaired artist who has commendable skills, and women dhakis who challenge the masculine stronghold of the performing arts. Inside the bogey, the makeover includes puja decor with cane installation, alpana art and a museum-style visual narrative. The exteriors of the second bogey are inspired by West Bengal's culture and landmarks. The artwork on this bogey reflects the dramatic elements of famous puja symbols. As styles, trends and attitudes evolve over the decades, one thing has remained constant in West Bengal, the spirit of celebration. The tram symbolizes a commitment to nurturing, inspiring and championing creativity and aesthetic excellence in Durga Puja pandals. The tram is to run from month of October till the new year on Taliganj-Baliganj route. Sushmita Mondol from Akashbani, Kolkata.
और पश्चिम बंगाल से सटे हुए राज्य असम की ओर चलते हैं और अपने श्रोताओं को बताएं कि असम का जो राज्य है प्राकृतिक खूबसूरती से भरपूर है। उसमें प्रचुर मात्रा में सुंदरता है और जड़ी बूटियां भी वहां पर मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं और इसके अलावा 16 वन्य जीव अभ्यारण्य भी वहां पर हैं।
एब्सोल्युटली, I'll tell you a dispatch on that. Assam has 7 national parks and 16 wildlife sanctuaries apart from several protected areas. Elephant is one of the majestic animals we can find largely in most of the forest areas. The state is facing a rising trend in human-elephant conflict from the last several years, and many people lost their lives every year. Now people are using biofences of lemon trees to keep elephants away from crops and homes. More from our correspondent.
Assam has the second highest number of elephants in India with an estimated population of around 5,719. The state is facing man-elephant conflict and the trend is rising. Every year, on an average, more than 70 people and 80 elephants lose their lives annually besides destroying properties including crops. The elephants come out of the forest for the populated areas mainly for food and destroy crops and human dwellings. Various strategies have been used in Assam's human-elephant conflict areas over the years. Tactics range from audio devices that amplify the buzz of bees to paper bombs, electric fences, and reserving space in elephant corridors to cultivate vegetation that the animals love. But all these are not natural and many a times fail to deter the majestic animals. Now, people are using an affordable thorny biofences of lemon trees to keep elephants away from crops and homes. The thorns and scents of lemon trees deter the elephants. This type of biofencing has been popular in this region for the past few years. The plantation of lemon trees around the farmlands as a community-based solution was started in 2019. The planting of lemon trees serves a dual purpose of finding a viable economic solution and addressing new ways of engaging with the human-animal conflict. Apart from acting as elephant repellents, the villagers are earning handsome money from selling lemons. These biofences methods have been put up in other parts of India such as Uttarakhand, Tamil Nadu, Kerala and West Bengal. Aminul Hazuddar, Guwahati.
और प्रमोद, भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सेवा की शुरुआत कल होने वाली है और ये शुरुआत होगी नागीपट्टनम से और इसके लिए भारत और श्रीलंका के बीच काफी समय पहले एक समझौता किया गया था.
That's right. The passenger ferry service between India and the neighboring island nation Sri Lanka will begin from Nagapattinam tomorrow. More than a decade after both the countries signed the agreement, a high-speed passenger craft held a successful trial run recently. Regular services on the 60 nautical mile stretch will be covered in 3 hours. We have a report.
The much-awaited passenger ferry service is all set to begin from Nagapattinam port in India to Kankesanthurai port in Sri Lanka from tomorrow morning. Cheriyapani, the vessel operated by Shipping Corporation of India and the Ministry of Shipping, will facilitate a smooth passage and people-to-people contact between Sri Lanka and India. The daily departure timing will be 10 a.m. at Nagapattinam and 3 p.m. at Kankesanthurai in the evening. The 150-seater ferry with a 14-member crew will cover a distance of 60 nautical miles. To ease the process of immigration and customs checking of passengers as well as baggage, required facilities have been set up at the port. The staff of the port have been rendered special training by the customs officials in Tiruchirappalli. The service would facilitate low-cost travel to Jaffna and back to Tamil Nadu. It may be recalled that in 1900s, a combined train and ferry service called Boat Mail or Indo-Ceylon Express was in operation between the two countries. While the train was operated between Chennai and Dhanushkodi in 1914, a boat service was operated to Thalaimannar from there and further to Colombo again by train. The boat service was stopped after a train was washed into the sea by huge waves in a storm in 1964. Joy, Akashwani Chennai, reporting for Parikrama.
And now it's time to listen to yet another chapter from India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
9th October is the death anniversary of a legendary freedom fighter, Dr. Saifuddin Kichlu, hailed as the hero of the Jallianwala Bagh protests against the draconian Rowlatt Act of 1919. Dr. Kichlu was also a founding leader of the Naujawan Bharat Sabha, which rallied thousands of students and young Indians to the nationalist cause. He was born on 15th January in 1888 in a Kashmiri family which had moved to Amritsar. A student of sharp intellect, Kichlu completed his bachelor's from Cambridge University in London and obtained his PhD from Germany.
His revolutionary aspirations dated back to his Cambridge days when he actively participated in Majlis, a society formed by Indian students to discuss India's colonial wars. It was through these meetings that he met India's future Prime Minister, Jawaharlal Nehru. Kichlu returned to India in 1913 and started practicing law in Amritsar. Professor Amandeep Bal, head of the Department of History in Guru Nanak Dev University, Amritsar, says, after his return from abroad, one thing that stood out vividly was Dr. Kichlu's devotion and love for the nation.
डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जब आए तो उन्होंने आके देखा कि अगर हमें हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है तो हमें मिलके काम करना चाहिए. यही वजह थी कि अगले दिनों में उन्होंने काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया कि यहाँ पे ये चीजें प्रमोट हो जाए.
डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, डॉक्टर किचलू लेफ्ट हिज लीगल प्रैक्टिस टू जॉइन द कॉज. In March 1919, the Imperial Legislative Council passed the Rowlatt Act, which empowered the government to put people in jail without trial.
Dr. Saifuddin Kichlu was one of the leaders who protested against the legislation. Professor Amandeep Bal says Dr. Kichlu's oratory was very powerful.
उन दिनों में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती थी जिनमें लोग इनको सुनने के लिए जाते थे, क्योंकि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू बहुत बढ़िया ओरेटर थे. वो हिंदुस्तान की बात भी करते थे, कम्युनल यूनिटी की भी बात करते थे, साथ में सत्याग्रह की बात करते थे, तो लोग उनके साथ जुड़ते थे.
On 9th April 1919, Dr. Kichlu and another freedom fighter, Dr. Satyapal, helmed an anti-government procession that progressed through the heart of Amritsar. The two leaders were arrested and interned in Dharamshala. On 13th April 1919, a meeting was called in the Jallianwala Bagh to protest the arrest. As the meeting was underway, British Brigadier General Reginald Dyer ordered his troops to open fire on the peaceful protesters.
The troops fired 1,650 rounds of bullets at the gathering, killing around 1,000 as per the Indian National Congress. The government released Dr. Kichlu in December 1919. He was a staunch advocate of communal harmony, strongly opposing the idea of partition along religious lines.
Dr. Kichlu suffered a cardiac arrest and passed away on 9th October 1963. On his death, Jawaharlal Nehru remarked that he lost a very dear friend who was a brave and steadfast captain in the struggle for India's freedom.
It was also on this day in 1942, freedom fighter from Punjab, Satyavati Devi, made a daring act of replacing the British flag with the Congress flag in Lahore jail. Popularly known as BG or Mataji, Satyavati had been arrested on August 26, 1942, along with her three young children. While in prison, she organized a protest over the deplorable conditions political prisoners were forced to live in. At 5 a.m. on October 9, 1942, she rallied fellow prisoners and replaced the British flag atop the women's jail with the Congress flag.
Satyavati Devi, the granddaughter of Swami Shraddhanand and the mother of former Vice President of India, Krishan Kant, hosted freedom fighters such as Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru and Bhagat Singh. She often fed Bhagat Singh with her own hands. She extended hospitality to the freedom fighters even as her husband, Lala Achint Ram, a freedom fighter who was popularly known as the Gandhi of Punjab, spent considerable time in British jails in Lahore. On the night before he left Lahore, nationalist leader Chandrashekhar Azad hid in her house. She left for her heavenly abode on 26th October 2010. Satyavati College of the University of Delhi is named after the great freedom fighter.
Mm-hmm. आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम परिक्रमा मुकेश कुमार और वीसी प्रमोद के साथ। और अब कार्यक्रम में वक्त हुआ है कि व्यापार जगत की हलचल जानी जाए। तो प्रमोद, क्या है आपके पास व्यापार जगत में?
जी, द की डोमेस्टिक शेयर इंडेक्सेस टुडे एंडेड मोर देन हाफ अ परसेंट डाउन। द बीएसई सेंसेक्स क्लोज्ड बिलो द 66,600 मार्क, व्हाइल द एनएससी निफ्टी सेटल बिलो 19,600 पॉइंट्स। The Sensex lost 483 points at 65,512, while the Nifty was down by 141 points to close at 19,512. In the forex market, the rupee closed at 83 rupees and 27 paise against the US dollar. The precious metal was up 599 rupees or 1% to trade at 57,470 rupees per 10 grams. Silver futures for December contracts also rose 586 rupees or 0.86% to trade at 68,756 rupees per kilo when reports last came in. And in intraday trade, Brent crude was trading at $86.92 per barrel.
और अब खेल जगत की बारी। तो प्रमोद, आप क्रिकेट देखते हैं?
जी, मैं खेलता भी था एक टाइम पे।
बिल्कुल, और इस समय विश्व कप क्रिकेट जो है वो अपने परवान की ओर बढ़ रहा है। और कल का जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला था, निश्चित तौर पर काबिले तारीफ था। और जिस तरह से भारतीय टीम शुरू में लड़खड़ाई थी,
जी,
केवल 2 रन पर 3 विकेट उनके गिर गए थे, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने जिस तरह से साझेदारी की और अंत में जाके उस मैच को जीत लिया, बड़े ही मतलब ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से निकाल ली जीत।
बिल्कुल, absolutely. And today in cricket, New Zealand were 224 for 3 in 37 overs against Netherlands in the league stage match of ICC Men's ODI World Cup in Hyderabad when reports last came in. Earlier, Netherlands won the toss and opted to bowl first. Last night, India beat Australia by 6 wickets in their first game of the World Cup 2023.
और अब वक्त हुआ है उन महान हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि है। इस क्रम में सबसे पहले किसे याद करेंगे?
हाँ, चंद्रशेखरन मेनोन। देयर इज एन एक्टर, ही इज बेटर नोन बाय हिज स्क्रीन नेम शंकर आडी। आपने एके हंगल का नाम तो सुना होगा
हिंदी फिल्म में। बिल्कुल,
जैसे एके हंगल है बॉलीवुड में, वैसे शंकर आडी थे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। हाँ, ही वॉज अ वेटरन मलयालम कॉमेडियन एंड कैरेक्टर आर्टिस्ट who had acted in over 700 Malayalam films. He dominated the Malayalam film scene in the 1960s, 70s and 80s as a comedian, along with Adur Bhasi and Bahadur. Later, he switched to character roles. And Shankarari joined the trade union movement at the Baroda Railways while he was studying marine engineering at Baroda. He abandoned his studies and he took up acting in the year 1968. And he's won several film awards, and one of his famous movies is Bharya, and we have a song from that movie. Let's listen to that song.
Oomukhavadilkel sneham vidartunna oondingalagunnu bharya ത്തിൻ മുള്ളുകൾ കൂവിരൽ തുമ്പിന പുഷ്പങ്ങളാക്കുന്നു ഭാര്യ ദുഃഖത്തിൻ മുള്ളുകൾ കൂവിരൽ തുമ്പിന പുഷ്പങ്ങളാക്കുന്നു ഭാര്യ.
And Mukesh, in 1968, he acted in Virudhan Shanku. It was the first full-length comedy in Malayalam cinema, and he won the state's best character award for that movie. He also holds the record for featuring in over 700 films.
बिल्कुल, और आज ही पुण्यतिथि है हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक रविन्द्र जैन की, और उनको मुख्य रूप से भजन गायक रूप में ख्याति मिली थी। रविन्द्र जैन हिंदी सिनेमा के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मन की आंखों से दुनिया को समझा। सरगम के 7 सुरों के माध्यम से उन्होंने जितना समाज से पाया, उससे कई गुना अधिक अपने श्रोताओं को वापस किया। वे मधुर धुनों के सर्जक होने के साथ साथ बेहतरीन गायक भी थे, और अधिकांश गीतों की आशु रचना भी उन्होंने खुद ही की थी। मन्ना डे के दृष्टिहीन चाचा कृष्णचंद्र डे के बाद रविन्द्र जैन दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें दृश्य श्रव्य माध्यम में केवल श्रव्य के सहारे ऐसा इतिहास रचा जो युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय बन गया। तो सबसे पहले उनकी जो फिल्म रही जिसमें उन्होंने संगीत दिया था, उसके बारे में बात करते हैं। और वो फिल्म थी चित्चोर, जो 1976 में प्रदर्शित हुई थी, और उसमें जो उन्होंने गाने बजे थे उसका एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
जी।
मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीता काजल तुम अपने नैनों में मले आना, जब दीप जले आना।
और प्रमोद रामरिक मनहर के जरिए राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या से मुलाकात रविंद्र जैन के फिल्म करियर को संवार गई। अमिताभ बच्चन नूतन के अभिनय वाली फिल्म सौदागर में गानों की गुंजाइश तो नहीं थी, उसके बावजूद रविंद्र जैन ने गुण बेचने वाले सौदागर के लिए मीठी धुनें बनाई जो यादगार होंगे, और यहीं से रविंद्र जैन और राजश्री का सरगम का कारवां आगे बढ़ता गया। तो सौदागर फिल्म का ये खूबसूरत गीत भी अपने श्रोताओं को सुनाइए।
जी बिल्कुल।
हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, रस का फूलों का गीतों का बीमार हूँ, हर हसी चीज का मैं तलबगार हूँ।
तपस्या चिच्चोर सलाखें फकीरा के गाने काफी लोकप्रिय हो और मुंबईया संगीतकारों में रविंद्र जैन का नाम भी स्थापित हो गया। दीवानगी के समय सचिन देव बर्मन बीमार हो गए थे और ये फिल्म उन्होंने रविंद्र जैन को सौंप दी थी। एक महफिल में रविंद्र जैन हेमलता गा रहे थे, श्रोताओं में राज कपूर भी थे और एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा गीत सुनकर राज कपूर झूम उठे और बोले ये गीत किसी को दिया तो नहीं। पलटकर रविंद्र जैन ने कहा कि राज कपूर को दे दिया है। बस यहीं से उनकी एंट्री राज कपूर शिविर में हुई। तो क्यों ना उनकी फिल्म गीत गाता चलकर ये गाना सुनते हैं।
जी।
बजने से काम सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी शाम वो तो मीरा का भी शाम।
और एक और फिल्म आई थी नदिया के पार, उसमें भी उन्होंने संगीत दिया था, तो उसका भी गाना सुनते हैं।
बिल्कुल। मुकेश, टुडे इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ फेमस सरोद प्लेयर उस्ताद अमजद अली खान साहब। ही वॉज बॉर्न इन 1945, सो टुडे वी विश हिम अ वेरी हैप्पी 78th बर्थडे। इंडियन क्लासिकल सरोद प्लेयर बेस्ट नोन फॉर हिज क्लियर एंड फास्ट एकतारा तांस। खान वॉज बॉर्न इन टू अ क्लासिकल म्यूजिकल फैमिली एंड हैज परफॉर्म्ड इंटरनेशनली सिंस द 1960s। ही वॉज अवॉर्डेड इंडियाज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म विभूषण इन 2001 एंड इंडियाज थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पद्म भूषण इन 1991 एंड पद्मश्री इन 1975। लेट्स लिसन टू वन ऑफ हिज रिसाइटल्स।
और आज ही जयंती है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पत्रकार कवि और साहित्यकार गोप बंधु दास की। ये उड़ीसा के प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता थे। गोप बंधु दास को उत्कल मणि के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा राज्य में जब भी राष्ट्रीयता और स्वाधीनता संग्राम की बात आती है तो लोग गोप बंधु दास का ही नाम लेते हैं। उड़ीसा के लोग इन्हें दरिद्र सखा अर्थात दरिद्र के सखा के रूप में याद करते हैं।
That's right, today is also the birthday of Sumita Sanyal. Mukesh, अगर आपने फिल्म गुड्डी आनंद और आशीर्वाद देखी हो तो उसमें जो एक्ट्रेस है बहुत ही लो प्रोफाइल थी बट बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी सुमिता सान्याल। एंड शी वॉज इंडियन एक्ट्रेस नोन फॉर अ वर्क इन बंगाल इन हिंदी सिनेमा एंड प्राइमरली बंगाली सिनेमा बट ऑफकोर्स शी डिड एक्ट इन कपल ऑफ हिंदी मूवीज ऑल्सो एंड ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उन्होंने काफी फिल्में की एंड वी हैव अ सॉन्ग फ्रॉम वन ऑफ अवर मूवीज विच इज आशीर्वाद। लेट्स लिसन टू द सॉन्ग।
जिया लागे ना तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना, जिया लागे ना।
तो श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो अनुमति दीजिए मुकेश कुमार और वीसी प्रमोद को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। आप अगर कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.newsonair.nic.in। तब तक के लिए दीजिए इजाजत,
नमस्कार।